नमस्कार, आज हम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये गुरु पूर्णिमा पर दिया गया था और इसका शीर्षक है बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए। ये अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था
जी। और ये विषय गुरु शिष्य का संबंध, ये तो हमेशा ही बहुत प्रासंगिक रहता है।
बिल्कुल, तो चलिए इस गहरे विचार में उतरते हैं
जी।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस उद्बोधन में वंदनीय माता जी गुरु की भूमिका को कैसे परिभाषित करती हैं, क्या मुख्य बातें हैं?
देखिए माता जी, गुरु को सिर्फ एक शिक्षक या मार्गदर्शक नहीं मानती। वो कहती हैं कि गुरु प्रेरणाओं का एक जीवंत स्रोत है। वो जीवन के रास्ते में जो कांटे होते हैं ना, उनको हटाते हैं और आत्मविकास का मतलब खुद को जानने का दरवाजा खोलते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो है गुरु का अपने तप का अंश शिष्य को देना। ये बड़ी गहरी बात है।
तप का अंश देना, ये सुनने में कितना शक्तिशाली लगता है। हाँ। इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक आशीर्वाद है या कुछ और?
नहीं, ये आशीर्वाद से कहीं ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए कि गुरु अपनी जो कठिन साधना से कमाई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा होती है ना, उसका एक हिस्सा, एक प्रवाह शिष्य की तरफ मोड़ते हैं। इससे शिष्य की अंदरूनी शक्ति, उसका संकल्प, वो बढ़ता है।
अच्छा।
चुनौतियां झेलने की ताकत बढ़ती है। इसीलिए तो कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंद दू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए।
हाँ हाँ।
क्योंकि गुरु ही तो वो माध्यम है जो हमें उस गोविंद से, उस परमात्मा से मिलाते हैं। जब हम भटक जाते हैं तो वही राह दिखाते हैं।
समझ गई। तो अगर गुरु इतने समर्थ हैं, इतना कुछ देने को तैयार है, तो फिर शिष्य की तरफ से क्या चाहिए? मतलब शिष्य को कैसा होना चाहिए? माता जी ने वो बांसुरी का उदाहरण दिया है ना।
हाँ, बांसुरी वाला उदाहरण बहुत सटीक है। जैसे बांसुरी अंदर से एकदम खोखली होती है, खाली।
हाँ।
तभी तो उसमें जब हवा भरी जाती है तो मधुर संगीत निकलता है। जब वो अंदरूनी खालीपन आता है तभी गुरु उसमें ज्ञान और शक्ति का संगीत भर पाते हैं। ये पूरा समर्पण मांगता है और अटूट श्रद्धा विश्वास।
लेकिन ये पूरी तरह खाली हो जाना, कठपुतली की तरह गुरु के इशारों पर चलना, ये सुनने में थोड़ा सा कह सकते हैं कठिन लगता है। क्या इसका मतलब है कि अपनी मर्जी खत्म कर देनी है?
नहीं नहीं, कठपुतली का मतलब यहाँ निष्क्रिय होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपने छोटे मैं को, अपने अहंकार को गुरु के विराट ज्ञान और उनकी इच्छा के आगे रख देना। ये श्रद्धा और विश्वास का खेल है सारा। तुलसीदास जी ने भी तो कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपी मो।
हाँ हाँ।
उन्होंने श्रद्धा और विश्वास को शिव पार्वती का रूप मानकर वंदना की है। इससे पता चलता है कि ये गुण कितने जरूरी हैं। जब शिष्य पूरी श्रद्धा से, विश्वास से जुड़ता है, तभी गुरु की कृपा उस पर सही मायने में बरसती है। बिना श्रद्धा के तो आप देखिए बुद्धि भी भटक जाती है, वो विनाशकारी हो सकती है।
माता जी ने गुरु की वो परोक्ष सहायता वाली बात भी बताई है ना, वो एक अनुभव पत्थर वाली घटना का।
जी हाँ, वो घटना जिसमें एक बच्ची गाड़ी में थी और गाड़ी पर जोर से पत्थर लगा, शीशा भी टूट गया, पर बच्ची को एक खरोश तक नहीं आई। ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उस पत्थर को रोक लिया हो या उसकी दिशा बदल दी हो। ये दिखाता है कि गुरु की मदद, हमारी जो छोटी सी समझ है ना, हमारी अपेक्षाएं हैं, उससे कहीं आगे तक काम करती है। वो जानते हैं कि शिष्य के लिए असल में क्या अच्छा है, भले ही हम कुछ और मांग रहे हों।
सही कहा, ऐसी घटनाएं तो विश्वास को और भी पक्का कर देती होंगी। क्या माता जी ने इसी संदर्भ में भविष्य के लिए भी कोई संकेत दिया है, समाज में बदलाव को लेकर कुछ?
हाँ बिल्कुल, इसी चर्चा में गुरुदेव का एक बहुत महत्वपूर्ण नजरिया सामने आता है। वो है 21वीं सदी को नारी सदी के रूप में देखना। उनका संकेत था कि अब समय आ गया है कि नारियां जागें, अपनी उस अंदरूनी शक्ति को पहचानें और आगे आएं, नेतृत्व करें।
अच्छा, नारी सदी।
जी, वो मानते थे कि मध्यकाल में जो उनकी शक्ति कहीं दब सी गई थी, अब उसे जगाने का वक्त है, क्योंकि उनमें दुर्गा जैसी अपार शक्ति छुपी हुई है, बस उसे जगाना है।
ये तो बहुत बड़ा संदेश है।
तो फिर गुरु को शिष्य से चाहिए क्या? क्या उन्हें धन दौलत चाहिए या कुछ और?
माता जी इस बारे में एकदम साफ कहती हैं, गुरु को धन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए शिष्य की निष्ठा, उसका विश्वास और सबसे जरूरी उसका समय।
समय? समय किस लिए?
अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए, लोक कल्याण के कामों के लिए, परमार्थ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए।
परमार्थ यानी दूसरों के लिए जीना। बिल्कुल, सच्चा महायज्ञ सिर्फ हवन कुंड में घी और सामग्री डालना नहीं है। असली यज्ञ है परमार्थ के लिए, मतलब दूसरों की भलाई के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना, अपने समय का, अपनी सुख सुविधा का। जैसे वो कहानी है ना उस गरीब भूखे परिवार की, जिसने अपने हिस्से की आखिरी रोटियां भी मेहमान को दे दी।
हाँ, सुनी है।
अध्यात्म का सिद्धांत बहुत सीधा है, जैसा बोइए वैसा काटिए। जितनी श्रद्धा से, जितने निस्वार्थ भाव से आप समाज को देंगे, ईश्वर उसे हजार गुना करके लौटाएगा।
तो इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि गुरु एक पथ प्रदर्शक है, प्रेरणा के स्रोत है, शक्ति देने वाले हैं जो हमें गोविंद तक, ईश्वर तक ले जा सकते हैं।
निश्चित रूप से, पर उनकी कृपा और शक्ति को पाने के लिए शिष्य का पूरा समर्पण, अटूट श्रद्धा और विश्वास ये पहली शर्त है। शिष्य को बांसुरी की तरह अंदर से खाली और ग्रहणशील बनना होगा। और ये यात्रा सिर्फ अपनी उन्नति के लिए नहीं है, ये समाज और राष्ट्र के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनसे भी जुड़ी है। और इसमें, जैसा कहा, नारी शक्ति की एक विशेष भूमिका है। गुरु तो तैयार हैं हमारे जीवन रथ के सारथी बनने के लिए, बस हमें अपना कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है।
यहाँ एक सवाल मन में आता है जिसे माता जी ने भी उठाया है, क्या हम गुरु को केवल पूजा की चौकी तक सीमित रखते हैं, मतलब बाहरी रस्मों में या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही याद करते हैं, या हमने सच में अपने दिल के दरवाजे खोलकर गुरु के दिए सिद्धांतों को, उनके ज्ञान को अपने जीवन में जगह दी है?
ये वाकई बहुत गहरा सवाल है, अपने अंदर झांकने वाला। क्या हम केवल बाहर बाहरी उलझे हैं या गुरु तत्व को सच में जी रहे हैं? इसी विचार के साथ ओम शांति ही।